हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिवांशा की तबीयत पूरी तरह तो ठीक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसके कहने पर वेद ने उसका डिस्चार्ज करवा लिया था। वेद शिवांशा को लेकर घर पहुंचा ही था कि तभी अपने सामने मौजूद लोगों को देखकर शिवांशा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उससे अलग वेद उन्हें देखकर गुस्सा हो गया था। सामने वेद की दादी गायत्री देवी थीं और उनके साथ लीला राजावत। लीला शिवांशा को खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। वेद लीला के इरादे और उसके बर्ताव के बारे में जानता था। शिवांशा उसे देखकर बुरी तरह डर गई कि कहीं गायत्री देवी का सहारा लेकर वो उसे वापस राजावत हाउस न ले जाए। हमेशा की तरह डर लगने पर शिवांशा वेद के पीछे छुप गई थी और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया था। लीला की नज़रें शिवांशा पर महसूस होते ही वेद खुद शिवांशा के आगे आ गया था। गायत्री देवी को उनके घर पर आने की इजाज़त भले ही थी, लेकिन इस अनजाने मेहमान को देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं था। वेद ने गायत्री देवी की तरफ गुस्से भरी निगाहों में देखा और पूछा, क्या मैं आपके यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? मैंने आपको यहाँ आने की परमिशन दी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने रिश्तेदारों को मेरे घर पर लेकर आ जाएं। गीतिका तुम्हारी भी बहन लगती है, इस नाते लीला जी हमारी समधन हुई, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? आज हम तुमसे लड़ने या किसी बहस के चलते यहाँ नहीं आए हैं, गायत्री देवी ने सख्त आवाज में कहा। ठीक है, फिर जिस काम के लिए भी आई हैं जल्दी बताइए और जाइए यहाँ से। थोड़ी देर बाद में बाकी बच्चे घर आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि आपको देखकर उनका मूड खराब हो। वैसे भी पूरा दिन काम करने के बाद वो काफ़ी थक जाते हैं, वेद ने जवाब दिया। वो भी गायत्री से किसी तरह की बहस नहीं करना चाहता था। गायत्री के कुछ भी कहने से पहले वेद ने शिवांशा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, जाकर अपने कमरे में आराम करो। वेद जानता था कि शिवांशा लीला का सामना नहीं करना चाहती है, इसलिए उसने उसे वहां से हटाना ही सही समझा। शिवांशा वहां से जाने को हुई तभी गायत्री ने कहा, अब ये इस घर की बहू है और इसे भी घर के जरूरी बातों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे तो अपने भाई बहनों को बच्चों की तरह प्यार करते हो, लेकिन उनकी फ़िक्र तुम्हें बिल्कुल नहीं है। नव्यांशी अगले महीने 28 साल की हो जाएगी, अगर अभी सही लड़का नहीं ढूंढा तो बाद में लड़का मिलने में दिक्कत होगी। वेद ने तुरंत गायत्री की तरफ देखा और बोरियत भरे लहजे में कहा, अच्छा तो आपको लगता है कि मेरी बहन के बारे में आप मुझसे या उससे भी बेहतर सोच सकते हैं? उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं है और ना ही वो शादी के लिए तैयार है। अभी उसे अपना करियर बनाना है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी बहन भी तुम्हारी उम्र में आकर शादी करे? तुम तो लड़के हो इसलिए अच्छी लड़की मिल गई, लेकिन लड़कियों को इस उम्र में अच्छे लड़के नहीं मिला करते हैं, गायत्री ने उसे डांटते हुए कहा। उसकी चिंता करने की ज़रूरत आपको नहीं है, अगर वो शादी नहीं भी करना चाहती तो ये उसकी चॉइस है। अगर आपका हो गया है तो आप अपने मेहमान के साथ यहाँ से जा सकती हैं, वेद ने उन्हें दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने कभी भी अपने भाई बहनों को शादी या बाकी चीज़ों के लिए फोर्स नहीं किया था। वंश भी जब आराध्या को पसंद करता था तो उसने आकर खुद ही वेद को बताया था। लीला को जब लगा कि गायत्री मामले को संभाल नहीं पा रही हैं, तब वो बीच में पड़ते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने घमंड को छोड़कर अपने से बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए? तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा जेल में है, फिर भी मैं सारी आपसी रंजिश को छोड़कर यहाँ तुम्हारी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। तुमने हमारे खानदान की बहू को किडनैप करके उसे अपनी पत्नी बना लिया, फिर भी मैं तुम्हारा भला सोच रहा हूँ। ऊपर से तुम हमें ही दो बातें सुना रहे हो। मैंने आपका इतना कुछ बिगाड़ा है तो आपको मुझसे बदला लेना चाहिए। मैंने नहीं कहा कि मेरा भला सोचिए, हमें आप जैसे शुभचिंतकों की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने आप जा रहे हैं या गार्ड्स को बुलाऊं? वेद ने तेज़ आवाज़ में कहा। वो लीला जैसे लोगों को अच्छे से जानता था। लीला ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम्हें रिश्ता नहीं करना तो इस बात को जाने देते हैं, लेकिन अंकुश तुम्हारी बहन गीतिका का पति है, गीतिका माँ बनने वाली है, ऐसी हालत में उसे अपने पति की ज़रूरत है। हाँ तो ये आपको सोचना चाहिए, मैंने आपके बेटे को जेल में नहीं डाला है, न ही मैं कोई पुलिस वाला हूँ या वकील जो उसे बाहर निकाल सकता हूँ। तुम अच्छे से जानते हो ये सब तुमने बदला लेने के लिए किया है। इस लड़की की बातों में मत आओ, ये देवराज। इससे पहले कि लीला अपनी बात पूरी करती, वेद तेज आवाज में जोर से चिल्लाया, गार्ड्स कहाँ रह गए तुम सब? वेद काफी गुस्से में था। हर बार राजावत फैमिली अपने फायदे के लिए शिवांशा के राज का फायदा उठाने की कोशिश करती थी। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसके फैमिली के सामने ये सच लाने की कि शिवांशा देवराज ठाकुर की पोती है। पूरा दिन हॉस्पिटल में बिताने के बाद वेद ऐसे ही थका हुआ था। ऊपर से लीला की हरकतों ने उसे और गुस्सा दिला दिया था। उसकी आवाज सुनते ही 3-4 गार्ड दौड़ते हुए अंदर आए। तुम लोगों ने नव्यांशी ने उस दिन साफ कहा था कि ये औरत इस घर के अंदर नहीं आनी चाहिए, फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? आज के बाद हमारे फैमिली मेंबर्स के अलावा बाकी किसी को बिना अपॉइंटमेंट घर के अंदर ना आने दिया जाए, चाहे वो हमारी दादी ही क्यों ना हो, वेद ने तेज और सख्त आवाज में कहा। उसने गायत्री देवी के घर आने तक बैन लगा दिया था। ये सुनकर गायत्री दंग रह गईं। सर, हम भी इन्हें अंदर नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन बड़ी मालकिन के साथ होने की वजह से कुछ कह भी नहीं पाए। एक गार्ड ने सिर झुकाकर कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब तो मुझे इस लड़की में सच में कोई गड़बड़ नजर आ रही है। जब से ये यहाँ पर आई है, तुम किसी का सामना तक नहीं करना चाहते हो। है कौन आखिर ये लड़की? गायत्री गुस्से में बोली। आखिर उसने वो सवाल पूछ ही लिया था जिसके बारे में लीला को कब से इंतजार था। लीला और गीतिका ने पहले ही गायत्री के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि शिवांशा उनके खानदान की होने वाली बहू थी। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं बताया था कि वो देवराज ठाकुर की पोती थी, वरना ये राज भी सामने आ जाता कि अब तक शिवांशा को वो लोग प्रोटेक्ट करते हुए अपने घर में रख रहे थे। गायत्री चिल्लाती रह गईं और वेड शिवांशा का हाथ पकड़कर उसे सीधा ऊपर लेकर जा रहा था। जा कहाँ रहे हो? मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर क्या रिश्ता है इस लड़की से ऐसा तुम्हारा, जो इसके लिए अपने परिवार वालों से भी लड़ रहे हो? अरे, शादी सबकी होती है और सब अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। गायत्री पीछे से चिल्लाती रह गई, पर वेद ने पलटकर एक बार देखा तक नहीं। वेद के वहां से हटते ही गार्ड ने कहा, देखिए, आप लोग खुद ही यहां से चले जाइए, वरना आपको इस उम्र में धक्के देकर बाहर निकालना हमें अच्छा नहीं लगेगा। हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखाओ। अरे, मेरे पोते का घर है, ऐसे कैसे बाहर निकाल दोगे? गायत्री ने उसे घूरते हुए कहा। गायत्री को भले ही वो बाहर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन उनकी निगाहें लीला पर टिकी हुई थीं। लीला ने गायत्री की व्हीलचेयर को पकड़कर कहा, चलिए आंटी जी, यहाँ से चलते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि इस लड़की का बैकग्राउंड काफी संदेहजनक है। ये आपके खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है। लायक तो ये हमारे खानदान की बहू बनने को भी नहीं थी, पर आप तो जानते हैं, मनन थोड़ा पागल है। कौन लड़की उसके साथ शादी करने को हाँ करती? बस इसीलिए हमने तो सच्चाई सामने होने के बावजूद भी आंखें बंद कर ली थीं। गार्ड्स के सामने उसका अपमान न हो जाए, ये सोचकर लीला गायत्री देवी को वहां से ले जाने लगी। वहीं वेद शिवांशा को लेकर अपने कमरे में आ चुका था।
शिवांशा की नजरें झुकी हुई थीं और लीला को देखने के बाद वो परेशान हो गई थी। वेद उसकी वजह से बार बार मुसीबत में पड़ जाता था, ये देखकर उसे भी अच्छा नहीं लगता था। आराम करो और दवाइयां टाइम से ले लेना, मैं कॉल करके आता हूँ। उसे वहां छोड़ने के बाद वेद ने जाना चाहा, लेकिन शिवांशा ने पीछे से उसे रोकते हुए आवाज लगाई, सुनिए, आप कब तक मेरी वजह से इस तरह परेशान होते रहेंगे? आज नहीं तो कल आपके घर वालों को पता चल ही जाएगा कि मेरी असली पहचान क्या है, ऐसे में वो आपको गलत समझेंगे, शिवांशा ने धीमी आवाज में कहा। उस दिन क्या होगा मैं खुद देख लूंगा, और मुझे अपने भाई बहनों को समझाना आता है, तुम उनकी फिक्र मत करो, वेद ने जवाब दिया। उसे तसल्ली देने के बाद वेद जाने के लिए पलटा ही था कि तभी शिवांशा ने फिर से पीछे से कहा, आप 6 महीने का इंतजार इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि सबको तलाक का बोलकर मुझे अलग कर सकें, और फिर बाद में मेरी जान भी जाएगी तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। वेद का चेहरा दूसरी तरफ था, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। उसका यही प्लान था। वेद के कुछ ना बोलने पर शिवांशा के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। कुछ देर के लिए उनके बीच बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। शिवांशा ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे भाई का ध्यान रखना, मेरे लिए यही काफी है। वो हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है तो आपका दुश्मन भी नहीं है। आप बस उसे अरमान भाई के पास छोड़ दीजिएगा, बाकी वो खुद देख लेंगे। रही बात मेरी, तो आपको 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे मरने के बाद आपकी मम्मी पापा की आत्मा को शांति मिलती है या आपको ये सुकून मिल जाएगा कि आपने उनकी मौत का बदला ले लिया है, तो इंतजार मत कीजिए। मुझे कहीं गाड़ी में भेज दीजिएगा और फिर मेरी मौत को एक्सीडेंट साबित कर दीजिएगा। सबको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा और ऐसे में वो आपसे नफरत भी नहीं करेंगे। उसके बाद आपको बार बार सबको सफाई भी नहीं देनी पड़ेगी और न ही हमारे रिश्ते का सच छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा। बोलते हुए शिवांशा की आवाज भारी हो गई थी। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सब बोल रही थी। हालांकि ये सब कहना उसके लिए भी आसान नहीं था। वहीं वेद ने ये सब सुना तो उसके सीने में भी दर्द जैसा महसूस हुआ। वेद को समझ नहीं आया कि वो शिवांशा को क्या जवाब दे। वहीं उसकी चुप्पी शिवांशा के दिल में और दर्द पैदा कर रही थी। वेद उससे नफरत करता था, ये जानते हुए भी उसके दिल में न जाने क्यों उसके लिए जज्बात पैदा होने लगे थे। जब भी वेद इस तरह अपने परिवार वालों के बीच फंस जाता या उसे शिवांशा के लिए झूठ बोलना पड़ता, तो उससे ज्यादा बुरा शिवांशा को लगता था। वेद के कुछ ना बोलने पर माहौल और भी अजीब हो गया था। शिवांशा ने खुद ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो फिर आप कब करने जा रहे हैं ये? उसकी बात पूरी होने से पहले ही वेद उसकी तरफ पलटा और सख्त आवाज में बोला, कुछ ज्यादा ही मुंह नहीं खुलने लगा है आजकल तुम्हारा। पहले तो ठीक से एक लाइन तक नहीं बोल पाती थी, और अब मुझे ज्ञान दे रही हो। मुझे जो करना होगा मैं खुद से कर लूंगा। फिलहाल तुम उस पर ध्यान दो जो तुम्हें करने के लिए कहा गया है, बस आराम करो। इससे पहले कि शिवांशा फिर से कुछ भी कहकर वेद को रोकने की कोशिश करती, वो तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए वहां से चला गया था। वहीं उसके जाने के बाद शिवांशा ने अपना सिर पकड़ लिया था। आप कितना भी गुस्सा कर लो या नफरत जताओ, लेकिन सच ये है कि आपकी अच्छाई आपकी दुश्मन बन रही है वेद। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, पर आपके लिए आज पहली बार डर लग रहा है। अगर गलती से भी आपके परिवार वालों को पता चला कि मैं कौन हूँ, तो कहीं इसकी जिम्मेदार वो आपको ना समझने लगे, शिवांशा ने परेशान लहजे में कहा। शिवांशा की फिक्र गलत नहीं थी। उसने इतने दिनों में महसूस कर लिया था कि उनका पूरा परिवार वेद की बहुत इज्जत करता था। ऊपर से अब वो लोग शिवांशा को वेद की पत्नी भी स्वीकार करने लगे थे। ऐसे में शिवांशा का सच बाहर आना वेद के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। शिवांशा की बातों ने वेद को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो भले ही सच कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, पर राजावत फैमिली की यही कोशिश रहती थी कि शिवांशा का सच उसकी फैमिली के आगे आ जाए, ताकि वो उसे ले जा सकें। एक तरफ जहां शिवांशा वेद को उसे मारने की और बाकी परिवार वालों से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं नव्यांशी ने शिवांशा को एक्सेप्ट करने के बाद एक नया स्टेप उठाया था, ताकि उनका रिश्ता गहरा हो सके। उसने कॉन्सर्ट की टिकट बुक करवा ली थी और वो अब आराध्या के साथ शिवांशा से इस बारे में बात करने के लिए आ रही थी।